ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ अलौकिक प्रसंग एवं श्री भगवान द्वारा दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुनेंगे, और इसके साथ ही साथ हम गान सरिता के तहत एक गीत तथा भजन शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक भजन गायन भी सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
गान सरिता में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसा ऊर्जा से भरा हुआ बच्चों के लिए मूल्य गीत, जिसका उपयोग बाल विकास की कक्षाओं में काफी लंबे समय से किया जा रहा है। इस गीत के द्वारा बच्चों को बहुत ही रोचक और सुरमय तरीके से परिश्रम के महत्व को समझाया गया है। प्रस्तुत है गीत जग में हम कुछ काम करेंगे।
कभी नहीं आराम करेंगे,
हम कुछ काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे,
काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे,
काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे,
जग में हम कुछ काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे,
हम कुछ काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे।
इस गीत को साईं संस्कार गीतमाला भाग एक में श्री सत्य साई बुक्स एवं पब्लिकेशन ट्रस्ट मध्य प्रदेश ने प्रकाशित किया है। वास्तव में रुकने वाली घड़ी चलती नहीं है और समय पर सब कार्य करना जरूरी है। इसलिए इस गीत के भावों को हृदय में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
साई राम, साई प्रेमवाणी के हिंदी प्रसारण में आपका पुनः स्वागत करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय भाग प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज के इस भाग में हम स्वामी की दिल्ली एवं ऋषिकेश की यात्रा के सुंदर वृत्तांत सुनाने जा रहे हैं। दिल्ली में भक्तों को दर्शन देने और माननीय स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में स्वामी द्वारा सन्यासियों और योगियों के साथ बिताए गए अद्भुत पलों का आनंद लेंगे। इसके साथ ही शिवानंद नगर एवं माता गंगा का सुंदर चित्रण भी सुनेंगे। ये प्रसंग बाबा की दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम से लिए गए हैं। प्रिय श्रोताओं, आइए एक बार फिर से हमारे प्रिय भगवान के दिव्य जीवन के उन दिव्य दिवसों को अपने आँखों के सम्मुख जीवंत करते हैं।
मद्रास में चार दिन ठहरकर बाबा वहां से 20 जुलाई को दिल्ली के लिए भक्तों के दल के साथ रवाना हुए। उन्हें बड़ी हंसी आई जब उन्होंने विमान के टिकट पर अपना नाम मिस्टर एसएस बाबा पढ़ा। विशेषतः मिस्टर शब्द पर वे खुलकर हंस पड़े। विमान यात्रा के दौरान बाबा अपने साथ गए भक्तों को बात करने के लिए अलग अलग बुलाते रहे और चर्चा कर उन पर अनुग्रह की वर्षा करते रहे। विंध्य पर्वत के ऊपर से विमान जब उड़ रहा था तो बाबा ने विमान में यात्रा कर रहे पंजाब के एक महाशय को अपने पास बुलाकर एक साक्षात्कार भी दिया। बाबा ने उनसे कहा कि आप स्कूल की एक शिक्षिका से प्रेम करते हैं, उससे विवाह कर लीजिए, ये उचित रहेगा। वो व्यक्ति अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसके जीवन के इस भाग को कोई नहीं जानता था। बाबा ने उसे ये भी कहा कि आपके पालकों को इसके लिए सहमति देने की प्रेरणा मैं प्रदान करूंगा और इस विवाह का कोई विरोध नहीं होगा। अपने जीवन की इन गुप्त बातों को जानने वाले सर्वज्ञ बाबा की अपार करुणा व प्रेम से अनुग्रहित होकर वो व्यक्ति आनंद के आंसू बहाने लगा। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में हवाई जहाज संध्या के 4:20 पर उतरा। बाबा के एक भक्त ने सुंदर नगर की एक कोठी में उनके निवास की व्यवस्था की थी। उस भक्त ने सभी का स्वागत किया। भक्तगण अपने अपने कमरे ढूंढकर सामान व्यवस्थित कर रहे थे। लगभग उसी समय बाबा अपना शरीर छोड़कर चले गए और कुछ समय पश्चात वापस आकर उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के एक भक्त को लकवे का एक खतरनाक दौरा पड़ा था और उसने बाबा को पुकारा था। उसकी पुकार सुनकर बाबा ने अपना शरीर छोड़कर बेंगलुरु जाकर उसकी रक्षा की और वापस आए। उस कोठी में साय प्रातः भजन कीर्तन के लिए दिल्ली के सभी साई भक्त आए। इनके अलावा अपने इष्ट मित्रों द्वारा बाबा के विषय में सुनकर सैकड़ों उत्सुक लोग भी बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए उस सुअवसर पर उपस्थित हुए। बाबा भी दिन में 4-5 तक लोगों को अलग अलग बुलाकर उनकी बाधाओं का निवारण करते रहे। 22 जुलाई को बाबा ने दिल्ली से कार द्वारा ऋषिकेश की ओर प्रस्थान किया। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने अपने कई शिष्यों को हरिद्वार भेजकर बाबा का स्वागत वहीं से करते हुए आश्रम तक लाने की आज्ञा दी थी। शिवानंद नगर की सीमा समीप आते ही उनके आश्रमवासी सन्यासियों की पंक्तियां मंत्र घोष करती हुई बाबा को साथ लेकर अपने आश्रम में पहुंची। इसके बाद आश्रमवासियों की एक विशेष सभा बुलाकर अपने अस्वस्थ होने की ओर भी ध्यान न देकर स्वामी शिवानंद ने बाबा का स्वागत किया। अपनी आदत के अनुसार प्रणव उच्चार के साथ उन्होंने बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बाबा ने प्रत्युत्तर में अपने अभय हस्त से सभी आत्म स्वरूपों को शांति, आरोग्य और उन्नति प्रदान करने वाली मुद्रा में शुभाशीष दिया। गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मनोहारी हरियाली तथा पहाड़ियों की पंक्तियों से सटकर बैठा हुआ सा वो शिवानंद नगर है। इससे लगकर 6 फरलांग चौड़ी गंगा नदी सदा उत्साह से कल्लोल करती हुई बहती रहती है। हिमालय से उतरकर प्रगाढ़ प्रवाह से अति तीव्र गति से बहती उस गंगा का जल अपनी शीतलता से निर्मित हिमराशि और बादलों की धुंधली सी चुनरी ओढ़े मन को मुग्ध कर देता है। जब बादलों का धुंधलका वायु के वेग से हट जाता है तो मानो एक पर्दा हटता है और नदी के दूसरे ओर तट का सुरम्य दृश्य आंखों को आकर्षित करता है। तटों पर अनेक मठ व मंदिर, स्वर्गाश्रम, गीता भवन, परमार्थ निकेतन आदि का दृश्य मन को मुग्ध कर देता है। सबसे भव्य दिखाई देने वाला दृश्य है वनों से घिरे पर्वतों की श्रेणी का। ये दृश्य मनुष्य के अपने वास्तविक मूल निवास परमात्मा से मिलन की स्वाभाविक प्यास को पुनः याद दिलाता सा प्रतीत होता है। चारों ओर आच्छादित पर्वतों की श्रृंखला परम स्थिति को प्राप्त किए अनंत समाधि में ध्यानस्थ संतों के समान प्रतीत होती है। ये पर्वत भी हमें आध्यात्मिक साधना के लिए आमंत्रण देते हैं और मन की शांति को प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। गंगा नदी भूमि व आकाश की कन्या है, जिसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के हित अपने तपोबल से अवतरित कर धरती पर प्रवाहित किया। आज वो गंगा नदी उनके पुत्र प्रपौत्रों व अनेक पीढ़ियों का अगणित समय से पालन पोषण और उद्धार कर रही है। इतिहास में, पुराण में, कथाओं में और उपन्यासों में, देश के त्योहारों में, नाट्य एवं शिल्पों में जिस गंगा नदी की प्रशंसा व आराधना भारत की करोड़ों जनता करोड़ों रूपों में कर रही है, वो गंगा इन सबसे अविचलित व वर्णन से परे है। वो है पतित पावनी कलिमल हारिणी भागीरथी। सब पापों का एक ही प्रायश्चित है, सब पापों का एक ही विमोचन है, सब तृष्णा का एक ही अमृत है, सब स्वर्गों का एक ही सोपान है, सब यज्ञ योग के लिए एक ही स्थान है, जो है मां गंगा में स्नान। गंगा जी का वर्णन वास्तव में हर क्षेत्र में किया गया है। ये वर्णन कविताओं में अमर है, कला में प्रतीक स्थान पाता है, स्थापत्य कला में ठोस होकर प्रदर्शित होता है, शिल्प कला में आदर्श रूप में दिखाई देता है, चित्रकारी में सजीव होकर मानवता का स्वरूप पाता है और संगीत में जिसका मधुर गुणगान हुआ है। प्रत्येक हिंदू के घर में गंगा जल उनके जन्म, पूजन और प्रत्येक संस्कार को पवित्र करने के लिए तत्पर रहता है। अगले दिन जब सभी आश्रमवासियों ने बाबा से संदेश देने के लिए निवेदन किया तो अपने संदेश में बाबा ने गंगा नदी का ही उदाहरण देते हुए कहा कि गंगा नदी सन्यासी के समान साधना करते हुए समुद्र में मिलने के लिए आतुर है। बाबा ने कहा कि प्रत्येक नदी अपने हृदय की गहराइयों में ये जानती है कि उसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है और वो सारी बाधाओं को पार करते हुए समुद्र में मिलने को आतुर रहती है। बाबा ने शिवानंद नगर की शांति की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये स्थान आध्यात्मिक प्रगति के लिए उचित है। बाबा ने यह भी कहा कि भ यानी सृजन, ग अर्थात संरक्षण और व अर्थात परिवर्तन या रूपांतरण होता है। ये सृष्टि की 3 अवस्थाएं हैं। बाबा ने कहा कि इन तीनों के लिए मैं सक्षम हूं, ये मेरे सहज गुण हैं। जय साई राम।
साई राम। आज के इस प्रसारण में हमने मद्रास से भगवान बाबा की नई दिल्ली की ओर की गई यात्रा, वायुयान में पंजाब के एक सज्जन को दिए गए साक्षात्कार की अद्भुत घटना को सुना। हमने नई दिल्ली से लेकर परम पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित शिवानंद नगर में स्वामी द्वारा अपने प्रवास के माध्यम से आश्रम वासियों एवं स्वामी शिवानंद जी पर अपने अनुग्रह की वर्षा करने के प्रसंग को सुना। इन प्रसंगों को सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर बहती हुई गंगा नदी अपने प्रिय भगवान को अपने पास आमंत्रित करना चाहती थी और उनके तट पर साधना में लीन सन्यासी भी परम ब्रह्म के सशरीर दर्शन करना चाहते थे और संभवतः भगवान ने अपने प्रेम की गंगा की वर्षा गंगा माता और योगियों तथा सन्यासियों पर करते हुए उन्हें भगवान के प्रेम रस से सराबोर कर दिया। ऐसे ही प्रसंगों को एक बार फिर से अगले भाग में सुनेंगे। प्रेमावतार श्री सत्य साई के इस भाग में अब आपसे विदा लेते हैं। साई राम।
साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में।
अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 7 जुलाई सन 1999 को मुंबई में एक अवसर पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
प्रेम स्वरूप
నీవు ప్రేమభావంతో చేయి, అదే సేవ. ప్రేమభావంతో ఒక కప్పు వాటర్ ఇచ్చేసేసి దాహం కొన్న వాళ్ళకి, అదే సేవ. దీనికంటే మించింది ఏముంది? సేవ చాలా సూక్ష్మమైనటువంటిది. ఏదో బజార్ల వెంట పోయి నూర్చి చేసి ఇవన్నీ చేయటం కాదు గొప్ప సేవ. కూడా అవసరమే. అనగా జగత్ కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, అది మంచిదే చేయటము. కానీ సేవ అనేటువంటి దానికి అది కాదు అర్థము. వాట్ ఎవర్ యూ డూ, డూ సిన్సియర్లీ. ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం, ప్రతి మానవుడు కూడా ఉద్యోగం చేసేందుకు చాలా జాగ్రత్తగా వహించాలి. మీ పనులు మీరు సక్రమంగా చేస్తే అందులోనే ధనం ఆవిర్భవి. 10,000 నువ్వు జీతం తీసుకుంటున్నావు, 10,000 రూపాయల వర్క్ నువ్వు చేయి, అందులోనే ధనం ఆవిర్భవిస్తుంది. ఈనాడు 10,000 మనం శాలరీ తీసుకుంటున్నాము, 10 రూపీస్ వర్క్ చేస్తున్నాము, దానివల్లనే మన ధనమంతా నాశనం అయిపోతుంది. కనుకనే గవర్నమెంట్ కూడా చాలా చెడ్డ పేరు వస్తుంది. అది కాబట్టి నీవు 100 రూపాయలు చేసుకున్నప్పుడు 100 రూపాయలు పని చేయి, అందులోనే ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. ఈ విధంగా మనకు మనం ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటుంది ఉంటే జగత్తంతా సుఖంగా ఉంటుంది. అది నిజమైన సేవ, సిన్సియర్ వర్క్. ఏదో గొప్పగా చేయటం కాదు, మన పనిని మనం చేయాలి. ఈ విధంగా ఉంటున్నప్పుడు ఎంతైనా సేవ కింద రూపొందుతుంది.
సేవా కర్నా ఆసాన్ హై, కింతు సేవా కా మత్లబ్ కేవల్ సడకో పర్ ఝాడూ లగానా నహీ హై. నిస్సందేహ యహ భీ ఆవశ్యక హై, పూరీ దునియా కో సాఫ్ సుథరా హోనా చాహియే. ఐసా కర్నా అచ్చా తో హై, కింతు ఉస్కా అర్థ సేవా నహీ హై. तुम जो भी करो गंभीरता से करो, दिल से करो. तुम 10,000 रूपये वेतन पाते हो. यदि तुम वेतन के अनुसार काम करोगे तो पैसा रहेगा. आज तुम्हें वेतन तो 10,000 रूपया मिलता है, किंतु काम तुम 10 रूपये जितना भी नहीं करते. इसीलिए पैसा चला जाता है, सरकार बदनाम होती है. यदि हम पूरी सच्चाई से काम करें, उत्पादन भी उसी अनुसार होगा. यदि तुम 100 रूपये लेते हो तो 100 रूपयों का काम करो. जब तुम अपने वेतन के अनुसार कार्य करोगे तो उत्पादन बढ़ेगा. वही सच्ची सेवा है. हमें अपना कर्तव्य भली भांति करना चाहिए. किसी भी काम को सेवा में बदला जा सकता
है. మరొక విషయం మీరు గుర్తు అందించుకోవాలి. ప్రపంచంలో ఎన్నో సంస్థలు ఉంటున్నాయి, ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు ఎన్నో ఉంటున్నాయి, ఎన్నో ఫాల్స్ ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు కూడా ఉంటున్నాయి. స్వామి పేరు పెట్టుకుని అనేక మంది స్వామి నాకు కల్లో వచ్చాడు, స్వామి నాకు శక్తినిచ్చాడు, స్వామి నాకు ప్రదర్శించాడు, స్వామి నాకు సాక్షాత్కరించాడు, ఇలాంటివన్నీ చెప్పుకుని ధనం సంపాదించుకునేటువంటి వారు కూడా లేకపోలేదు. గిఫ్ట్ పవర్, ఇది గిఫ్ట్ కానే కాదు, భక్తులకు హార్ట్ టు హార్ట్ ఇచ్చేటువంటిది గిఫ్ట్. అదే లవ్. ఇలాంటి దానికి మీరు ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఇవ్వకండి. మన సత్యసాయి సంస్థలు చేసేటువంటి యొక్క సరి అయినటువంటి సిన్సియర్ వర్క్ ప్రపంచంలో ఏ సంస్థలు కూడా చేయటం లేదు. ఎన్నో సంస్థలు ఉంటున్నాయి, కానీ మన సంస్థలో చేరినటువంటి వ్యక్తులు సిన్సియర్ గా, ప్రీతిగా, ఆనందంగా, సౌఖ్యంగా, సంతోషంగా, ప్రేమతో చేస్తున్నారు. ఈ సిన్సియర్ కు మరి ఏమాత్రము దోషం రాకుండా చూసుకోవాలి. ఏ రాష్ట్రమైనా పోనీ ఏదో మంచి చెట్లు కొన్ని ఉంటాయి, కానీ దాన్ని చూడనక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రపంచం లోపల మన భారతదేశమే కాదు, విదేశాల యందు కూడాను సత్యసాయి సంస్థలు చేసేటువంటి ఒక చక్కని వర్క్ ఏ సంస్థలు కూడా చేయటం లేదు.
ఇస్ దునియా మే बहुत सी संस्थाएं और समितियां हैं, बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, उनमें बहुत सी बनावटी संस्थाएं भी हैं, बहुत सी झूठी घोषणाएं हैं, स्वामी मेरे सपने में आते हैं, स्वामी मुझे सशरीर दर्शन देते हैं, वे मुझसे पैसा इकट्ठा कराना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सब झूठे दावे हैं। यह भी कि बाबा ने मुझे किसी दैवी शक्ति का वरदान दिया है, यह कोई उपहार नहीं हो सकता। दिल से दिल का संबंध ही भगवान का उपहार है, यह प्रेम से प्रेम का संबंध है। तुम कभी भी ऐसी झूठी अफवाहों पर ध्यान मत देना। गंभीरता पूर्वक किए जाने वाले कार्यों की संख्या के हिसाब से सत्य साई सेवा समिति दुनिया में नंबर एक है। दुनिया में ऐसे कई संगठन हैं, किंतु सत्य साई समिति के सदस्य दुनिया भर में पूरी लगन, पूरी निष्ठा, भरपूर आनंद, संपूर्ण तैयारियों और त्याग की भावना के साथ कार्य करते हैं। अब हमें यह देखना चाहिए कि हम यह लगन निरंतर बनाए रखें। यद्यपि हर अच्छे काम में बाधाओं का आना स्वाभाविक है, किंतु तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री सत्य साई सेवा समिति के सदस्यों द्वारा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छे कामों का बीड़ा उठाया जाता है, और कोई संगठन इसका मुकाबला नहीं कर सकता।
टीचर्स कादू, सेवकुलु कादू, धर्म कादू, बाल विकास कादू, अंदर कुडनु मंचि पनि चेस्तुन्नारु। कानी ई बॉम्बे पट्टणम लोपल मरिंत अभिवृद्धि कावालि। ఎందుకోసమనగా పెద్ద టౌన్, ఈ టౌన్ కు ఇంత మాత్రమే మనం ఉపయోగపెట్టే ప్రయోజనం కాదు. అందరినీ లాగాలి దీంట్లోకి, మ్యాగ్నెట్ మాదిరి రావాలి. మ్యాగ్నెట్ మాదిరి పనులు మంచివేని వాళ్లే ఇందులో ప్రవేశించాలి. కనుక ఆ విధంగా మీరు ఈ సంస్థను పెంచి దేశం యొక్క సేవను మనం పెంచుకుని లోక సమస్త సుఖినో భవంతు అనేటువంటి యొక్క సార్థక నామాన్ని మనం పొందాలి. చాలా మంది స్త్రీలు కూడా వారి ఇంట్లో ఎన్నో అవస్థలు ఉండేప్పటికీ వదిలిపెట్టి సంస్థలో ప్రవేశిస్తున్నారు. ఈ సాక్రిఫైస్ అనేటువంటిది భారతీయులు ఎంతే గొప్పగా ఉంటుంది పూనుకుంటారు. అందులో యువకులు ఎక్కువగా కావాలి. ఈనాటి యువకులు తమ యొక్క శక్తి సామర్థ్యం గుర్తించుకొనక, తమ సస్వరూపాన్ని సంరక్షణ భాగ్యాన్ని ఆశించక, కేవలం దేహ పుష్టిని, మనోపుష్టిని, ఈ ధైర్య సాహసాన్ని, విద్యాపుష్టిని ఆధారం చేసుకుని విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్నారు. ఈ యొక్క దేహ శక్తి కాదు ప్రధానము, గండ బలము, గుండె బలము, దైవ బలం కావాలి, ధర్మ బలం కావాలి. ఆ దైవ బలము, ధర్మ బలము ఉండినప్పుడే గుండె బలము, గండ బలము అభివృద్ధి అవుతుంది. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను దైవ బలము, ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రవేశించాలి. ధర్మమును మనం దృష్టిమోట సాయి సంస్థలు బొంబాయిలో ప్రారంభించాము. కనుకని ఈ బాంబిని అన్నింటికీ ఆదర్శమైనటువంటి యొక్క ఆదర్శ రూపాన్ని పొందాలి, మంచి పేరుని తీసుకుని రావాలి. యావత్ భారతదేశమైనకంతా కూడా బొంబాయి మంచి ఆదర్శవంతమైనటువంటి సంస్థ అనుకోవాలి. నేను చెప్పాను, భారతదేశం లోపల ఈ యొక్క బొంబాయి అనేటువంటిది స్టమక్ వంటిది. ఈ స్టమక్ మంచిగా లేకపోతే దేహమంతా మంచిగా లేకపోతుంది. కనుక స్టమక్ ను చక్కగా హెల్తీగా చూసుకోవాలి, దానికి తగినటువంటి బలాన్ని అందించాలి, తగినటువంటి సేవలను అందించాలి. కనుక బొంబే మంచిగా ఉంటే దేశమంతా బాగుపడుతుంది, తప్పక బాగుపడుతుంది. దేశం యొక్క మంచి చెడ్డలంతా బొంబాయి పైన ఆధారపడి ఉంది. కనుక బాంబే ప్రజలు తగినటువంటి ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వండి. నేను సంవత్సరానికి 2 టూర్లు వస్తాను. నాకు ఒక్కటి ప్రధానమైనటువంటి ప్రశాంతి నా నిలయమని నాకు ఎప్పుడూ లేదు. ముంబాయి నా నిలయమే, ఢిల్లీ నా నిలయమే, కలకత్తా నా నిలయమే, బెంగళూరు నా నిలయమే, అంతా నా నిలయమే. ఒక బొంబాయి లోపల సత్యసాయి ప్రశాంతి నివాసి అంటారు, అది చాలా తప్పు. హృదయవాసి, మీ వెంటనే, మీ గంటనే, మీ ఇంటనే, మీ గంటనే ఉంటున్నారు. నాకు ఒక మందిరం అనేటువంటిది లేదు. ఈ సత్యాన్ని మీరు గుర్తించుకుని స్వామి నా వెంటనే ఉన్నాడు అని మీరు ఉత్సాహంగా పనిచేయాలి. అప్పుడే ఈ సేవలు కూడా పెరిగిపోతాయి. మరొక తూరి వచ్చి ఒక వారం ఉంటాను ఇక్కడ. ఈ 3 దినముల లోపల ఎవరికి తృప్తి లేదు, నాకు తృప్తి లేదు. ఢిల్లీ లోపల చూస్తే వాళ్ళ యొక్క రోదన, వాళ్ళ యొక్క బాధన నాకే చాలా కష్టమైపోయింది ఢిల్లీ. కానీ అక్కడ కూడా నేను షార్ట్ టైం. కనుకనే ఎక్కడికి వచ్చినా కానీ మీ సంస్థను పెంచుకోండి, నా డేట్స్ కూడా పెంచుకుంటాను.
సాయి సమితికి స్థాపన యహీ ముంబై శహర్ మే హుయి థీ, ఇస్లియే ముంబై కి సత్య సాయి సమితి కో పూరే విశ్వ కా ఆదర్శ బన్నా చాహియే, పూరే దేశ్ కా ఆదర్శ బన్నా చాహియే. భగవాన్ నే కహా कि मुंबई भारत का पेट है, उदर है, यदि पेट खराब हो तो पूरा शरीर बीमार हो जाएगा। इसलिए पेट सदा सही और स्वस्थ होना चाहिए। अतः तुम्हें उसे मजबूत रखना चाहिए। तुम्हें सेवा कार्य उचित रूप से करना चाहिए। यदि मुंबई सुरक्षित और संपूर्ण है तो पूरा देश संपूर्ण और सुरक्षित रहेगा, यह निश्चित है। इस देश की अच्छाई बुराई मुंबई पर निर्भर है। यदि सत्य साई समिति मुंबई के सभी सदस्य पूरी सच्चाई से कार्य करें तो भगवान वर्ष में 2 बार मुंबई में दर्शन देने आएंगे। भगवान कभी यह नहीं चाहते कि केवल प्रशांति निलयम ही आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाए। भगवान अपने आप को प्रशांति निलयम तक ही सीमित नहीं करना चाहते। वे दिल्ली में हैं, कलकत्ता में हैं, मुंबई में हैं। भगवान तो हृदयवासी हैं, तुम्हारे दिल में हैं। भगवान ने स्वयं को सीमेंट कंक्रीट की इमारतों तक ही सीमित नहीं रखा है। वे प्रत्येक हृदय में विराजमान हैं। वे तुम्हारे भीतर, तुम्हारे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, चारों ओर हैं। यह मानकर कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम पूरे जोश के साथ कार्य करो। भगवान पुनः आएंगे और पूरे सप्ताह मुंबई में निवास करेंगे। भगवान का यह 3 दिवसीय छोटा सा दौरा संतुष्टि नहीं देता। भगवान का वार्षिक आगमन बहुतों के लिए असहनीय होता है, क्योंकि भगवान अल्पावधि के लिए ही रहते हैं। तुम अधिकाधिक कार्य करो तो भगवान भी उसी अनुपात में अधिक निवास करेंगे।
ప్రేమ స్వరూపుల మీరందరూ ఉత్సాహంగా ప్రోత్సాహంగా ప్రేమతో దయతో శ్రద్ధతో ఎన్నో పనులు చేస్తున్నారు, కానీ ఇంకా కొంత యువకులంతప్పుడు అభివృద్ధి పరచాలి. ఈ యొక్క శక్తిని మనం అందించాలి. భవిష్యత్ భారత వీరులు వారే కనుక భవిష్యత్తుకు సరైనటువంటి బాధ రావాలంటే ఈ యొక్క విద్యార్థులను మనం ప్రేమించాలి. విద్యార్థుల యొక్క కేవలము ఒక విధమైన ఆర్టిఫిషియల్ గా జీవిస్తున్నారు. అలంకారాలు చేసుకోవటము, మోటార్ సైకిల్ పైనో లేక ఇంకో దీనిపైనో చక్కగా తిరిగాటము. కనుక ఈనాటి యువకులంతా కూడా టింకిల్ టింకిల్ లిటిల్ స్టార్ హౌ ఐ వండర్ వాట్ యు ఆర్ ఆ విధంగా ఉండకూడదు. నడుము వంచి పని చేయాలి. కర్మను ఆచరించినప్పుడే వారి దేహం కూడాను అందంగా ఆ విధంగా అవకాశంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంటారు. కానీ కాలంతా వ్యర్థం చేయటం వల్ల ఎనర్జీని వ్యర్థం చేస్తున్నారు. చూడండి, నాది 74వ సంవత్సరము, పిల్లల్ని చూడండి 17 సంవత్సరం 18 సంవత్సరం అయిపోయినారు. ఎందుకోసం ఇట్ అయిపోతున్నారు? కాలంను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. తాము చేసే కర్మలంతా కూడా అపవిత్రమైనవిగా ఉంటుంది. ఆ పవిత్రమైన కర్మల్లో పాల్గొనండి, మీరు కూడా చిరంజీవులుగా ఉంటుంటారు. లాంగ్ లైఫ్, హెల్తీ లైఫ్, హ్యాపీ లైఫ్. కానీ అది వారు గుర్తించడం లేదు. ఇది మేము యువనము, దీనివంతా చేసుకోవాలి. ఈ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇలాంటి దీనిపైన పోతున్నారు వీళ్ళ ప్లాన్లు. గర్ల్స్ ఒక్కదాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, ఇఫ్ యూ లైక్ గెట్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ గెట్ మ్యారేజ్. కానీ ఫ్రెండ్షిప్ మాత్రం మంచిది కాదు, నాట్ గుడ్. ఎందుకంటే వారెవరో నీవెవరో, బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఆల్ ఆర్ సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్. కాబట్టి ఈ ఫ్రెండ్షిప్ లో ఏమైపోతుంది? హలో హలో, హవ్ ఆర్ యూ, గుడ్ బై అయిపోతుంది. కానీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ రైట్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వస్తుంది. రైట్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీనే లేదు. హలో 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 అనుకుంటూ హాలో అయిపోతున్నారు. అది కాదు. మీరు ఏ విధమైన దీంట్లో కూడా ఫ్రెండ్షిప్ మాత్రం చేయకూడదు. అది చాలా చెడ్డది, చాలా మన భవిష్యత్తుకే చాలా మాయని మచ్చగా రూపొందుతుంది. కనుక అలాంటివి చేయకుండా తల్లిదండ్రుల పర్మిషన్ తీసుకుని తీసుకోండి, చాలా సంతోషం. నేను కూడా ఆశీర్వదిస్తాను. కానీ చాలా మంది తమకు మ్యారేజ్ ఇష్టం లేదేమో అనుకుంటారు. నాకు అలాంటివి ఎప్పుడు కూడా భావాలు లేవు. ఎందుకంటే చేసుకోండి, నేను ఫోర్స్ చేయను. నాది సోర్స్, నాట్ ఫోర్స్. ఈ సత్యాన్ని మీ అందరు గుర్తించుకుని యువకులు సక్రమమైన మార్గంలో ప్రవేశించండి. ఇది ఏ నిజమైన సేవ, ఇదే నిజమైనటువంటి సర్వీస్. మన సత్యసాయ సంస్థలో ఉండేటువంటి యువకులంతా మంచి మార్గంలో పోతుంటే ప్రపంచమంతా వీటిని చూస్తుంది. ఆ చూపు లోపలనే వారు కూడా మార్పు వచ్చేస్తారు. ఏ విధమైనటువంటి క్రోధములకు, తాపములకు, ఈర్షకు, అహంకారములకు, ఆడంబరాలకు అవకాశం ఇవ్వకూడదు. ఈ యొక్క గుణములు లేకుండా చేసుకుంటే ఇంతకంటే గొప్ప పేరు మనకేం కావాలి? భారతదేశం నందే కాకుండా అన్ని దేశముల యందు కూడాను సేవా సంస్థలు చక్కగా పనిచేస్తున్నాయి.
ప్రేమ స్వరూపో తుమే చాహియే కే తుమ్ ప్రేమ్ సహనశీలత ఔర్ త్యాగ్ కీ భావనా కే సాథ్ సేవా కార్య కరో. జోష్ तुम्हें नौजवानों को इस समिति से जोड़ना चाहिए और उन्हें ताकतवर और क्रियाशील बनाना चाहिए। भविष्य निर्भर होता है वर्तमान पर। नौजवानों को भविष्य सुरक्षित बनाना चाहिए। आज का विद्यार्थी जीवन कृत्रिम हो गया है। वे केवल स्वयं को सजा धजा कर मोटरसाइकिलों पर घूमते मात्र हैं। अपनी आंतरिक शक्ति का सदुपयोग करो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर की तरह चारों ओर तुम्हें उड़ना नहीं चाहिए। शरीर को झुकाओ और समाज की सेवा करो। अच्छे कार्य करोगे तो शरीर सुंदर, स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा। यदि तुम अपना समय व्यर्थ गंवाते हो तो तुम अपना सब कुछ व्यर्थ कर देते हो। भगवान 74 वर्ष के हैं। आज 17-18 वर्ष के लड़कों के गालों पर तुम झुर्रियां देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आज के नौजवान अपना समय गलत कार्यों में व्यर्थ ही गंवा देते हैं। यदि तुम पवित्र कार्य करोगे तो तुम्हें अमरत्व अवश्य प्राप्त होगा। उचित मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो लंबा, स्वस्थ और आनंदमय जीवन जियोगे। आजकल के युवक युवतियां लड़कियों और लड़कों के पीछे भागते फिरते हैं। लड़कों और लड़कियों को यह समझ लेना चाहिए कि यदि तुम किसी को चाहते हो तो उसके माता पिता से आज्ञा लेकर विवाह कर लो, किंतु ऐसी मित्रता उचित नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। विवाह होने से पहले हम सब आपस में भाई बहन हैं। आजकल की मित्रता में होता क्या है? इसका आरंभ हेलो, आप कैसे हैं से होता है और अंत अलविदा से हो जाता है। विवाह के पश्चात तुम अधिकार और जिम्मेदारियों से युक्त हो जाओगे। आज कहीं भी अधिकारों और जिम्मेदारियों का अस्तित्व नहीं है। हम जो हेलो कहते हैं वह हकीकत में केवल पतन का गर्त है। ऐसी मित्रता मत पालो, यह बहुत बुरी है। असफलता इसके मूल में है। विवाह करने में कोई बुराई नहीं है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, किंतु कुछ चीजों के लिए भगवान अनुमति नहीं देते। भगवान तुम्हें विवाह करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। भगवान स्रोत हैं, बंधन नहीं। इस सत्य को जानो। युवाओं को एक शुद्धोचित जीवन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, यही सच्ची सेवा है। बच्चों के चाल चलन पर पूरे विश्व की नजर रहती है। उनके जीवन का रूपांतरण अति आवश्यक है। किसी भी तरह के क्रोध, लालच, ईर्ष्या और घृणा को कभी जगह मत दो। यदि तुम में अवगुण नहीं होंगे तो तुम केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नाम कमाओगे।
अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा मुंबई में दिए गए एक दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं श्री अमय देशपांडे जी। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान कृष्ण के पांडुरंग रूप की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं।
जय पांडुरंग प्रभो विठला, जगदोद्धारा हरि विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, श्री रमणी हृदयांत रंग, मंगलकर करुणांत रंग, आश्रित दीन जनावन रंगा, जगदोद्धारा हरि विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला।
आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे काली दो भी कहते हैं।
जय पांडुरंग प्रभो विठला,
जय पांडुरंग प्रभो विठला,
जय पांडुरंग प्रभो विठला,
जय पांडुरंग प्रभो विठला,
जगदो धारा हरि विठला,
जगदो धारा हरि विठला,
जगदो धारा हरि विठला,
जगदो धारा हरि विठला,
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला,
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला,
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला,
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला,
श्री रमणी हृदयांतरंगा,
श्री रमणी हृदयांतरंगा,
श्री रमणी हृदयांतरंगा,
श्री रमणी हृदयांतरंगा,
मंगलकर करुणांतरंगा,
मंगलकर करुणांतरंगा,
मंगलकर करुणांतरंगा,
मंगलकर करुणांतरंगा,
आश्रित दीन जनावन रंगा,
आश्रित दीन जनावन रंगा,
आश्रित दीन जनावन रंगा,
आश्रित दीन जनावन रंगा,
जगदो धारा हरि विठला,
जगदो धारा हरि विठला,
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ 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 विठला,
जगदो धारा हरि विठला।
कहरवा ताल और राग सिंधु भैरवी पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुक करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। विट्ठल भगवान कृष्ण के उस रूप का नाम है जो ईंट के ऊपर खड़े हुए दिखाई देते हैं। भगवान ने ऐसी भाव मुद्रा क्यों बनाई है? इस अद्भुत लीला के पीछे कौन सी कहानी छुपी है? आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण को विट्ठल, पांडुरंग, पंढरीनाथ, विठोबा इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। ये बहुत समय पहले की एक घटना से संबंधित है जो भारत के महाराष्ट्र प्रांत के पंढरपुर शहर में घटित हुई थी। उस समय यह शहर पंढरपुर नाम से नहीं जाना जाता था। यह शहर इस घटना के पश्चात ही तीर्थ स्थल बना। भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था पुंडलीक। वे अपने माता पिता में बहुत अधिक श्रद्धा रखते थे, लेकिन उनके विवाह के पश्चात किसी कारणवश उनमें परिवर्तन आया और फिर उनका बर्ताव अपने माता पिता के साथ ठीक नहीं रहा। उनके माता पिता से ये प्रताड़ना सहन न हो पाई और इस कारणवश उन्होंने काशी में जाकर बसने का निश्चय किया। वे जीवन पर्यंत वहीं रहकर इस प्रताड़ना से अपने आप को बचाकर अपनी अंतिम घड़ी का इंतजार करना चाहते थे। लेकिन जब पुंडलीक को पता चला कि उसके माता पिता काशी जा रहे हैं, तो वो भी सपत्नीक उस यात्रा में उनके साथ शामिल हो गया। यात्रा के दौरान भी वो खुद घोड़े पर सवार था और अपने माता पिता को पैदल चलाया करता था। शाम के वक्त अपने माता पिता से घोड़े की सफाई और चारे पानी की व्यवस्था करवाता था, जिससे दूसरे दिन की यात्रा हो सके। उसके माता पिता के दुख के दिनों का कोई अंत नजदीक दिख नहीं रहा था। एक दिन यात्रा करते करते वे लोग एक संत की कुटिया पर पहुंचे। यात्रा की थकान मिटाने के लिए परिवार ने उनके साथ कुछ दिन बिताने का निश्चय किया। उस रात पुंडलीक को एक अनुपम दृश्य दिखाई दिया। भोर के वक्त उन्होंने देखा कुछ बहुत ही सुंदर स्त्रियां मलिन कपड़े धारण किए आश्रम में प्रवेश कर रही हैं। फिर वे स्त्रियां आश्रम की साफ सफाई करने लगी और फिर उसके बाद पानी भरा और संत के मैले कपड़ों आदि को धोने में व्यस्त हो गईं। फिर इन सब कार्यों को निपटाकर वे स्त्रियां पूजा रूम में चली गईं। और पुंडलीक जी ने देखा कि जब वे उस पूजा गृह से बाहर निकली तो उनके वस्त्र एकदम साफ सुथरे थे और फिर पलक झपकते ही वे सब अदृश्य हो गईं। पुंडलीक के मन में पूरे दिन ये दृश्य घूमता रहा और वे रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे, इस जिज्ञासा में कि शायद उन्हें यह दृश्य फिर से दिखाई दे जाए। उस रात भी इस दृश्य की पुनरावृत्ति हुई। इस बार पुंडलीक जी उन स्त्रियों के समीप पहुंचे और पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम भारत की पुण्य नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। यात्री जब हमारे तटों पर स्नान करने आते हैं अपने पापों को धोने के लिए, उससे हमारे वस्त्र मलिन हो जाते हैं। उन्होंने कहा, पुंडलीक, तुम अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो, इसीलिए तुम बहुत बड़े पापी हो। स्त्रियों के इन वचनों ने पुंडलीक को स्तब्ध कर दिया और वे पूरी तरह टूट गए। लेकिन उनके अंदर मन में कुछ बदलाव आया। उन्हें अपने बुरे कर्मों का आभास हुआ और वे अब जी जान से अपने माता पिता की सेवा करने में लग गए। वे माता पिता के इतने भक्त हो गए कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं रहती थी और अपने माता पिता के सुख के लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। वे उनकी सभी जरूरतों को पूरा करते थे और उनके सोने के पश्चात ही स्वयं सोते थे। एक शाम भगवान स्वयं पुंडलीक को आशीर्वाद देने के लिए उनके सामने प्रकट हुए। पुंडलीक को ज्ञात था कि भगवान दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन वे उस समय अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, उनके पैरों को दबा रहे थे, क्योंकि अब तक उनके माता पिता सोए नहीं थे। उन्होंने अपने माता पिता की चरण सेवा जारी रखी और अपने पास पड़ी एक ईंट को दरवाजे की तरफ खिसकाकर बोले, भगवान, जब तक मैं अपने माता पिता की सेवा खत्म करता हूँ, कृपया इस आसन को ग्रहण करें। भगवान राजी खुशी मुस्कुराते हुए उस ईंट के ऊपर खड़े हो गए और प्रतीक्षा करने लगे। जब पुंडलीक की सेवा समाप्त हुई और उनके माता पिता सो गए, तब उन्होंने भगवान से देरी से आने के लिए क्षमा याचना की। भगवान तो बहुत खुश थे, उनको बहुत आशीर्वाद दिया। भगवान ने उनकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। तब श्री पुंडलीक जी बोले, भगवान, जैसे आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, वैसे ही सारे भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। आप भूलोक में निवास कीजिए, जिससे सब लोग आपकी दर्शन और पूजा कर सकें और आपका अनुग्रह प्राप्त कर सकें। भगवान ने भक्त के हृदय की प्रार्थना को सुना और वहीं पर उसी ईंट के ऊपर विराजमान हो गए। विट्ठला का अर्थ है भगवान जो ईंट पर खड़े हैं। इस तरह ईंट पर खड़े रहकर उन्होंने मानव जाति को संदेश दिया है कि माता पिता की सेवा सर्वोपरि है, और जो माता पिता की सेवा करता है भगवान उनकी सेवा समाप्ति तक प्रतीक्षा करते रहते हैं वरदान देने के लिए। जगतो धारा शब्द दो शब्दों से बना है, जगत और उद्धार। जगत का अर्थ हुआ ब्रह्मांड या ये संसार, और उद्धार मतलब ऊंची स्थिति पर ले जाना। यहां पर श्रीमती गीता मोहन राम जी द्वारा बताई गई एक घटना स्मरण में आती है, जिससे ये ज्ञात होता है कि भगवान बाबा जगत के उद्धार के लिए ही अवतरित हुए हैं। जब भगवान बाबा ने गीता जी के परिवार को अमेरिका में बस जाने का परामर्श दिया तो गीता जी के पति पहले यूएसए के लिए रवाना हुए। इसके 2 महीने पश्चात श्रीमती गीता जी अपने जुड़वा बच्चों के साथ उनके पास रहने के लिए भारत से रवाना हुई। चूंकि वे अमेरिका में बसने जा रही थीं, तो उनके मित्र और बंधु बांधवों ने बहुत सारा सामान अमेरिका में अपने रिश्तेदारों और मित्रों को देने के लिए उनको दिया, जिसके कारण उनका बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया और इन सब के चलते उनका सूटकेस बहुत भारी भी हो गया। गीता जी के पिता श्री पद्मनाभन जी ने उन्हें घुड़की लगाते हुए कहा, तुम स्वामी का कहना नहीं मानती हो, बाबा हमेशा कहते हैं कि कम सामान लेके यात्रा करनी चाहिए और तुम इतना सारा सामान इकट्ठा करके लेके जा रही हो। कार से भगवान के दर्शन हेतु वृंदावन जाते समय दोनों पिता और पुत्री में ये बहस चल ही रही थी कि वे वृंदावन आश्रम पहुंच गए। भगवान ने गीता जी की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ, क्या पद्मनाभन तुमको हमेशा की तरह डांट रहे हैं? पद्मनाभन जी ने कहा, स्वामी ये आपके द्वारा दी हुई शिक्षा का अनुसरण नहीं करती है। देखिए ना, ये अपने साथ 3-3 भारी भरकम सूटकेस लेके जा रही है। तब स्वामी ने कहा, तुम क्यों चिंता करते हो, ये उसका सूटकेस है, उसे ले जाने दो, वो ले जाना चाहती है तो। लेकिन पद्मनाभन जी बोले, स्वामी सूटकेस बहुत भारी है, ये उठा नहीं सकती। तब भगवान ने कहा, तुम उठाओगे क्या? अरे मैं उठाऊंगा ना इसके सूटकेस। सब ने स्वामी के कहे हुए इस वाक्य को मजाक समझकर हंस के टाल दिया। जब गीता जी यूएसए पहुंची तो जैसा कि उनके पिता ने कहा था, वे सूटकेसेस नहीं उठा पा रही थी, बहुत भारी थे। इसी कारण उन्हें सूटकेसेस को ट्रॉली में रखने में भी काफी दिक्कत हुई, और ऊपर से उनके दोनों बच्चे इधर उधर दौड़ भी रहे थे। लेकिन वे किसी तरह सूटकेसेस को ट्रॉली में रखने में कामयाब रही। तभी अचानक एयरपोर्ट के पीए सिस्टम में से उनका नाम लेकर अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें कहा कि वे सिंगापुर एयरलाइंस के काउंटर के समीप अविलंब पहुंचे। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनका सामान उठाने में उनकी मदद करने के लिए इंतजार कर रहा है। गीता जी ने सोचा कि शायद उनके पति ने सामान वामान उठाने के लिए उनकी मदद की व्यवस्था की है। उन्हें वृंदावन में स्वामी ने जो कहा उसका स्मरण नहीं रहा। चूंकि गीता जी पहली बार यूएसए आ रही थी, इसीलिए उन्हें यात्रा संबंधी अनेकों दस्तावेज निपटाने थे, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो सज्जन सामान लिए इनके पास ही खड़े रहे। यहाँ तक कि उन्होंने कस्टम विभाग के काउंटर पर तैनात कर्मचारी से गुजारिश भी की कि ये महिला बहुत देर से कागजातों की प्रक्रिया में व्यस्त रही हैं, कृपया इनके सामान की क्लियरेंस को जितने जल्दी से जल्दी हो सके निपटा दें। ये सुनकर काउंटर पर खड़े कर्मचारी ने तुरंत ही गीता जी को क्लियरेंस देकर रवाना कर दिया। बाद में जब गीता जी कार में बैठ अपने बच्चों के साथ चलने के लिए तैयार हुई तो वे अपने पति से बोली, हमें उस कुली को पैसे देने हैं। जब उन्होंने उसे ढूंढा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। जब वे कार से वापस घर जा रही थीं, तब उन्हें अचानक वृंदावन में जो घटना घटी थी उसके बारे में स्मरण हो आया, और उन्होंने अपने पति को बताया कि कैसे उनके और पिताजी के बीच में बहस हुई, फिर भगवान ने आखिर में क्या कहा था कि वे स्वयं उनके भार को उठाएंगे। और तभी अचानक वे सहर उठी ये सोचकर कि कहीं भगवान स्वयं ही तो उस पुरुष के रूप में नहीं आए थे उनका भार उठाने। वे ये सोचकर स्तब्ध रह गईं कि उनके कारण भगवान को इतना कष्ट झेलना पड़ा। अगले दिन जब भगवान वृंदावन में दर्शन देने के लिए आए तो वे गीता जी के पिता के पास पहुंचकर बोले, पद्मनाभन तुम ठीक ही कहते थे, गीता के वे सूटकेसेस बहुत भारी थे। बाद में जब पद्मनाभन जी ने गीता जी को बताया कि स्वामी ने दर्शन में उनसे क्या कहा, तब गीता जी का हृदय द्रवित हो गया। काफी समय पश्चात जब गीता जी भगवान से पुट्टपर्ती में मिली तो उन्होंने कहा, स्वामी मुझे खेद है कि आपको मेरा भारी भरकम सूटकेस उठाना पड़ा। मालूम है भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान ने कहा, मैं तो इस पूरे संसार के भार को उठाने आया हूं, तुम्हारा सूटकेस तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। पंढरपुर जो पश्चिम भारत में स्थित है, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक तीर्थ स्थान है जहां भगवान का मंदिर है और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भगवान और रुक्मिणी जी का प्रमुख आराध्य स्थल है। महाराष्ट्र में इस मंदिर में सबसे अधिक भक्तगण दर्शन करने आते हैं। सन 60 के दशक के आखिरी बरसों में भगवान बाबा ने अपनी दिव्य उपस्थिति से इस पवित्र स्थल को और पवित्र कर दिया था। 13 जून सन 1965 को भक्तगणों के साथ बाबा महाराष्ट्र में स्थित उस मंदिर में पहुंचे। कुछ देर तक स्वामी पांडुरंग के सामने खड़े रहे, उसी मूर्ति के सामने जिस रूप में भगवान बाबा ने स्वयं भी कई भक्तों को अपना दर्शन दिया है। इसके बाद वे गर्भगृह के भीतर अपनी शक्ति रकुमाई जी के समक्ष गए। वहां उन्होंने मंगल सूत्र सजित कर उनके गले में पहना दिया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे भागवत पुराण में वर्णित दृश्य एक बार फिर साकार हो गया हो। चोखा मेला जी भगवान पांडुरंग के भक्त थे और पंढरपुर में रहते थे। वे पिछड़े वर्ग के थे और मेहनत मजदूरी का काम करते थे। उनकी दिनचर्या थी रोज सवेरे भीमा नदी में स्नान करना, पांडुरंग के सारे मंदिरों की प्रदक्षिणा करना और आखिर में भगवान पांडुरंग के मुख्य मंदिर के द्वार के सामने खड़े होकर प्रार्थना करना। चूंकि वे नीच जाति के थे, अन्य जाति के लोग उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे। चोखा मेला जी की अटूट श्रद्धा और भक्ति का उपहास उड़ाते हुए कई लोग उनसे कहते थे, तुम दूर से भगवान की पूजा अर्चना क्यों करते हो? वे तुम्हें दिखाई तो देते नहीं। चोखा मेला जी कहते थे, सूरज हमसे हजारों मील दूर है लेकिन फिर भी वो कमल पुष्प का ध्यान रखता है। कछुए की माँ की नजर हमेशा सागर से तट पर अपने अंडे पर ही गड़ी रहती है, इसी प्रकार भगवान भी मेरा ख्याल रखते हैं। जो लोग मंदिर के अंदर प्रवेश तो करते हैं लेकिन उनके हृदय में प्रेम ना हो तो उनको लाभ कैसे प्राप्त होगा? उसी रात भगवान पांडुरंग चोखा मेला जी को गर्भगृह में ले जाते हैं बंद दरवाजे के भीतर से। भगवान उनका आलिंगन करते हैं और प्रेम से उनके साथ वार्तालाप करते हैं। सुबह जब पुजारियों ने उन्हें अंदर देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्हें भय था कि मंदिर अपवित्र हो गया है, इसके चलते कहीं दूसरी जाति के लोग उन पर लांछन न लगाते रहें। चोखा मेला जी ने उन सभी पुजारियों से कहा, माँ गंगा अपवित्र नहीं हो जाती जब निचली जाति का मनुष्य उनमें नहाता है, न ही पृथ्वी उस पर चलने से, न वायु उनके स्पर्श से पवित्र होती है। ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है? आपका शास्त्र ज्ञान अधूरा है। अगर आप समझते हैं कि सर्वव्यापक श्री विष्णु मेरे स्पर्श से अपवित्र हो जाते हैं। वे लोग चोखा मेला जी को कोई उचित उत्तर न दे सके, इसीलिए गुस्से में आकर उन लोगों ने उन्हें नदी के उस पार वनवास दे दिया। फिर भगवान ने उन सभी पुजारियों को दिखाया कि वे चोखा मेला जी से बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने कैसे दर्शाया? चोखा मेला जी नदी के उस पार से भगवान को ताजे दही का भोग अर्पण करते थे और वो दही गर्भगृह में भगवान के कपड़ों पे पाया जाता था। जो भी दंड चोखा मेला जी को दिया जाता था गर्भगृह में स्थित पांडुरंग के ऊपर उसके निशान उभर आते थे। अचंभित हो पुजारियों ने चोखा मेला जी को गर्भगृह में जीवन पर्यंत आने का आमंत्रण दिया। उस दिन से गर्भगृह में जाकर वे पूजा करते थे। प्रेम की इस जीत और अंधविश्वास पर शास्त्र की इस विजय को भक्तगण हर्षोल्लास के साथ आज भी मनाते हैं। जब चोखा मेला जी वनवास में थे तब भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी, कोई उनके विश्वास को हिला न सका। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक पत्थर का दीप स्तंभ नदी के उस पार ठीक मंदिर के मुख्य दरवाजे के सामने बनवाया, जिसे वे हर रोज पूजते थे। आज भी भक्तगण उस दीप स्तंभ का दर्शन करने जाते हैं जो तेल के दीपक से काला और दैदीप्यमान है। मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास ही चोखा मेला जी की समाधि है जहां भक्तगण नमन करते हैं। तो चलिए अब हम भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर हृदय को साई प्रेम की भावनाओं से भरकर भाव विह्वल होकर एक बार फिर से इस भजन को गाते हैं।
జయ పాండురంగ ప్రభో విఠలా,
జయ పాండురంగ ప్రభో విఠలా,
జయ పాండురంగ ప్రభో విఠలా,
జయ పాండురంగ ప్రభో విఠలా,
జగదోధార హరి విఠలా,
జగదోధార
జగదోధార హరి విఠలా,
జగదోధార హరి విఠలా,
పాండురంగ విఠలా పండరినాథ విఠలా,
పాండురంగ విఠలా పండరినాథ విఠలా,
పాండురంగ విఠలా పండరినాథ విఠలా,
పాండురంగ విఠలా పండరినాథ
శ్రీరమణి హృదయాంతరంగా,
శ్రీరమణి హృదయాంతరంగా,
శ్రీరమణి హృదయాంతరంగా,
శ్రీరమణి హృదయాంతరంగా,
మంగళకర కరుణాంతరంగా, జగదోధార హరి విఠలా,
జగదోధార హరి విఠలా,
జగదోధార హరి విఠలా,
జగదోధార హరి
విఠలా, జయ పాండురంగ ప్రభో విఠలా,
జయ పాండురంగ
జగదోధార హరి విఠలా, పాండురంగ విఠలా పండరినాథ విఠలా, పాండురంగ విఠలా పండరినాథ విఠలా, శ్రీరమణి హృదయాంతరంగా, జగదోధార హరి విఠలా, పాండురంగ విఠలా పండరినాథ 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 విఠలా, జగదోధార హరి విఠలా.
इसी के साथ हमारी कक्षा आज यहीं समाप्त होती है. आशा है आपको ये प्रशिक्षण पसंद आया होगा. हम जल्द ही आपके सम्मुख एक और भजन के साथ उपस्थित होंगे. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. जय साई राम.
इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258 हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इसी प्रार्थना के साथ हम साई प्रेमवाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।